الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो पिछली क्लास में हमने आयात को पढ़ना शुरू कर लिया था, या शायद हमने अभी इस वाली क्लास के अंदर, यानी जो सुबह को दरस कुरान की क्लास होती है, तो उसमें हमने पिछली वाली आयात की तफसीर पढ़ के मुकम्मल करी थी, राइट? तो उसके अंदर हुक की बात हुई थी कि ये 3 से 12 दीन सारा का सारा हुकूक का ही नाम है, कि ये दीन हमें बताता है, यानी ये जो हिदायत अल्लाह ताला ने अपने रसूलों के वास्ते से हमें अता फरमाई,
ओह
तो ये इसमें है क्या क्या हिदायत है, क्या गाइडेंस है, क्या इल्म है, ठीक है? वो इल्म सारा का सारा यही है कि इस दुनिया की जिंदगी में हमारे ऊपर किसका क्या हक आता है, ठीक है? क्या हक आता है, और उसके बाद फिर दूसरी चीज क्या बताता है कि इस हक को कैसे अदा करना है, ठीक है? क्या हक आता है, ठीक है? या दूसरे अल्फाज में कहें कि कौन 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 से हुकूक आते हैं और इन हुकूक को हमने कैसे कैसे अदा करना है, ये क्या और कैसे, यही सारा का सारा दीन है। अब इसमें एक और चीज जो आपको बताई थी, तीसरी बात क्या थी कि इन हुकूक को जाहिर है क्या का जवाब क्या होता है कि भाई इल्म हासिल करना है, हुकूक के बारे में इल्म हासिल करना है, ठीक है? तो हमारा काम फिर क्या बना इस दुनिया के अंदर आकर के, हमारा काम क्या बना, इल्म हासिल करना, ठीक है? और दूसरी चीज के अमल करना, ठीक है? जैसे जैसे इल्म हासिल करते गए कि क्या है, क्या हुकूक है, इसका क्या हक है, इसका क्या हक है, अल्लाह का क्या हक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हक है, ठीक है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वरसा हैं, यानी उलमाए कराम, ठीक है? वो रसूलुल्लाह के ही वरसा हैं ना, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म सीखा। सहाबे कराम, सबसे पहले उलमाए कराम कौन थे? सहाबे कराम, जिन्होंने बराहे रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म सीखा। फिर उनके बाद ताबईन, जिन्होंने सहाबा से इल्म सीखा। किस बात का इल्म सीखा? कि भाई क्या हुकूक है, क्या हुकूक है और उनको कैसे अदा करना है, ठीक है? तो इनके हुकूक हमारे ऊपर आते हैं ना, नबी अलैहिस्सलाम का हक आता है, और नबी अलैहिस्सलाम के बाद उनके जो वरसा हैं, उनके जो इनहेरिटर्स हैं, यानी सहाबे कराम, फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन, फिर उनके बाद के जनरेशन के अंदर जितने उलमाए कराम आते हैं, ये सब नबी अलैहिस्सलाम की ही हुकूक में शामिल हो जाते हैं, इनके हक, इनके हुकूक, ठीक है? इनके हुकूक अदा करना नबी अलैहिस्सलाम के हुकूक अदा करने में ही शामिल हो जाता है, ठीक है? तो मौलवियों का भी हक है हमारे ऊपर, उलमाए कराम, राइट, मशायख-ए-उज़ाम, ठीक है? इनका भी हक है हमारे ऊपर। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक हो गया सारा का सारा, ठीक है? इसके बाद फिर वालिदैन का हक आता है, इसके बाद फिर वालिदैन का हक आता है, इसके बाद फिर वालिदैन का हक आता है, ठीक है? रसूलुल्लाह और उनके वरसा के बाद फिर हमारे ऊपर किसका हक आता है? हमारे वालिदैन का हक आता है, ठीक है? इनसे पहले नहीं आता, इनके बाद आता है। अनफॉर्चुनेटली हमने क्या बना लिया, हमने पहले बना लिया, ठीक है, वालिदैन का हक पहले आता है। नहीं, वालिदैन का हक पहले कैसे आ सकता है, वालिदैन का हक पहले कैसे आ सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वालिदैन का हक जो है वो उलमा और मशाइख के हुकूक से ज्यादा हो सके। ठीक है, वालिदैन तो हमारी दुनियावी खुराक का सबब बनते हैं, दुनियावी खुराक, दुनियावी रिस्क, जो कि बहुत ही मुख्तसर जिंदगी के लिए होता है, बहुत ही मुख्तसर जिंदगी। ठीक है, और जो उलमा और मशाइख नबी अलैहिस्सलाम का जो सिलसिला है, ठीक है, जो कि उलमा और मशाइख की शक्ल में हम तक पहुंचता है, ये रूहानी रिस्क का सबब बनते हैं। ठीक है, जो किस काम में आते हैं हमारे, वो आखिरत की जिंदगी के काम में आता है, हमेशा हमेशा की जिंदगी में वो हमें उसकी जरूरत पड़ती है, उसके लिए उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमेशा हमेशा की जिंदगी का जो हमारे ऊपर एहसान कर रहा है, राइट, तो वो क्या एक इंतहाई मुख्तसर सी जिंदगी में जो हमारे ऊपर एहसान कर रहा है, उससे उसका कम हक बन जाएगा, उसका हक कम हो जाएगा हमारे ऊपर? सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, और फिर उसके बाद एक तमसील से भी मशायख समझाते हैं कि भाई माँ बाप जो होते हैं वो औलाद के ऊपर से नीचे आने का सबब बनते हैं, राइट। हम कहाँ थे, आलमुल अरवाह में थे, आलमुल अरवाह कहाँ पर है, आसमानों में है। ठीक है, तो आसमानों से इस जमीन पर आने का सबब कौन बन रहे हैं, राइट, वालिदैन बन रहे हैं, अम्मी और अब्बू। ठीक है, और उलमा और मशाइख और ये सिलसिला जो नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है, ये पूरा का पूरा सिलसिला किस बात का सबब बन रहा है, ये नीचे से ऊपर जाने का सबब बन रहा है। नीचे से ऊपर क्या मतलब, के जन्नत। ठीक है, सबसे ऊपर क्या चीज है फिर, जन्नत। ठीक, तो वहां पे जाने का सबब कौन बन रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम और उलमा और मशायख। ठीक है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम से हम डायरेक्ट तो बातचीत नहीं कर सकते। ठीक है, कि नबी अलैहिस्सलाम आप बताइए कि मुझे ऐसे ये वाला काम कैसे करना चाहिए, राइट, मैं अपने हुकूक कैसे अदा करूं, मैं अपनी बीवी का हक जो है वो इस सिचुएशन के अंदर मैं अपनी बीवी का हक कैसे अदा करूं, मैं अपने बच्चों का हक कैसे अदा करूं, 21st सेंचुरी में मैं कैसे अदा करूं। नबी अलैहिस्सलाम से जाके पूछ सकते हैं, मदीना तैयबा की ज्यारत के लिए जाते हैं, वहां पे रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े होकर के पूछे ना जा करके कि मैं अपने बच्चों को 21st सेंचुरी में कैसे तालीम दिलवाऊं, कैसे तालीम दिलाऊं उनको, कैसे उनको जो है वो इस माहौल से बचाऊं, राइट। वो तो किताबों में जाकर के, तो नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें किताबों में मिलेंगी ना, रोजे पे तो आपको जवाब नहीं आएगा इसका, तो किताबों में तो 1400 साल पहले वाली हालात के बारे में लिखा हुआ है, उन हालात को इस जमाने के अंदर कैसे अप्लाई करना है, ये तो आपको ना तो नबी अलैहिस्सलाम बताएंगे, ना सहाबा कराम बताएंगे, राइट, और ना जो है ताबईन बताएंगे, ना तबा ताबईन बताएंगे, ये कौन बताएंगे, ये तो इस दौर के मशायख बताएंगे, इस दौर के जो जिंदा मशायख आपके सामने मौजूद है वो बताएंगे ना। तो वो जो बताएंगे तो वो क्या बता रहे हैं, यही बता रहे हैं कि शैतान से कैसे बचना है, अपनी औलाद को शयातीन से कैसे बचाना है, बुरे माहौल से कैसे बचाना है, दज्जाल के फितनों से कैसे बचाना है, क्यों बचाना है, ताकि जहन्नुम में जाने से बच जाए और जन्नत में जाने के काबिल बन जाए, इसीलिए बताएंगे ना, और क्या वजह है बताने की, राइट, सेहत खराब ना हो जाए इस वजह से, नहीं, रूह खराब ना हो जाए, आखिरत खराब ना हो जाए, दीन सिखाने का मकसद क्या है, तमाशे तबले बजाना ढोल बजाना, ये है दीन, दीन दीन सीखने सिखाने का मकसद, नहीं, जहन्नुम से बचना और जन्नत में जाना, दीन का सिर्फ ये मकसद है, दीन का ये मकसद है। ठीक है, तो ये बताने वाले जो हैं तो उनका हक हमारे पास ऊपर नहीं बनता कोई भी, कोई नहीं, नहीं बहुत बहुत बनता है और बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, क्योंकि वो अल्लाह से जोड़ने का सबब बन रहे हैं, सबसे बड़े हमारे खालिक और हमारे मालिक से जुड़ने का सबब बन रहे हैं। ठीक है, तो उलमा का हक होता है हमारे ऊपर, फिर वालिदैन का हक होता है हमारे ऊपर, फिर उसके बाद जो है वो अपने यानी औलाद का हक होता है, बीवी बच्चों बीवी का हक होता है, शौहर के ऊपर शौहर के ऊपर होता है, यानी शौहर का हक होता है बीवी के ऊपर, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अच्छा आखिरी बात इसमें क्या बताई थी, ये तो आप बताएंगे। ठीक है, हुकूक को सीखना है और हुकूक को अदा करने का तरीका भी सीखना है, ठीक, और इसके ऊपर अमल करना है, इनके ऊपर यही सारा का सारा दीन है। और आखिरी बात क्या थी, तीसरी बात क्या बताई थी आप, तीसरी बात, चलो इन्होंने पहले से माशाल्लाह टाइप करके जो है ना वो तैयार बैठी हुई थी इन्होंने, एंड एंटर कर दिया। उनको पता था तीसरा सवाल क्या करना है। उन्होंने लिखा है कि मुश्किल लगता है कोशिश के बावजूद हक अदा करना, तो अब क्या करें? कोशिश के बावजूद हुकूक अदा करना मुश्किल लगता है, तो अब क्या करें? ठीक है, तो यही सवाल था, यही बात थी कि तीसरी चीज क्या बताई थी। तो उसका जवाब इन्होंने लिख दिया है कि मुआफी और मदद अल्लाह ताला से मांगनी है कि ए अल्लाह, मैं नहीं कर पा रही हूँ दूसरों के हुकूक अदा, ठीक है, मैं आपके हुकूक अदा नहीं कर पा रही हूँ, दूसरों के हुकूक अदा नहीं कर पा रही हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए और माफ करवा भी दीजिए। आप माफ भी कर दीजिए, अपने हुकूक मेरे ऊपर माफ कर दीजिए, और दूसरों के हुकूक आप उनको दे दिला करके माफ करवा दीजिए। ठीक है, ठीक है। बाकी लोगों ने भी जवाब दिया, इतना मुश्किल है तो कैसे अदा करें, तो नहीं कर सकेंगे ना, अदा कर ही नहीं सकते। हक अदा चाह कर भी ना कर सकें तो फिर क्या करें? माफी मांगना और मदद मांगना, नदामत वाली जिंदगी अख्तियार करना। ठीक है ना, ये जो माफी मांगते रहना है ना, ये क्या है? नदामत वाली जिंदगी। और इसका फिर फायदा क्या होता है? एक तो अल्लाह ताला से माफी मिल जाती है, ठीक है भाई, अल्लाह से कोई माफी मांगे और अल्लाह माफ ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि माफी मांगे और माफी ना करे, माफ ना करे अल्लाह ताला, तो माफी मिल जाती है। और जो फिर अल्लाह ताला को दिखाता है ना कि वाकई वो बहुत सीरियस है, तो वो फिर अल्लाह ताला दूसरों से भी माफ करवा देते हैं, है ना। अल्लाह ताला अपनी जन्नत की नेमतें दे दिला करके माफ करवा देंगे। ठीक है, और तीसरी चीज क्या होती है कि इत्मीनान कल्ब मिलता है, बिल्कुल सही, इत्मीनान कल्ब मिलता है। और एक चीज शायद पिछली क्लास में रह गई थी, वो ये है कि ऐसा शख्स जो होते हैं ना, ये दूसरों के लिए मुसीबत नहीं बनता। ये सिर्फ ये नहीं कि इसको अपना इत्मीनान कल्ब मिल जाता है, बल्कि ये दूसरे इंसानों के भी इत्मीनान का सबब बन जाता है। जिन लोगों के साथ ये रहता है, रहती है, अब ये उनके लिए मुसीबत नहीं बनी रहती, क्योंकि ये तो अपने बारे में परेशान है ना। इसका तो मिजाज ही जो है ना, वो रोने धोने वाला मिजाज बन गया है, अल्लाह के सामने रोने धोने वाला मिजाज। अब ये किसी दूसरे को कैसे अजियत पहुंचाएगी कि तुमने ये नहीं किया, तुम वो नहीं करती, तुमने ऐसा गलत किया, तुमने मेरा जो है वो हक अदा नहीं किया, तुमने मुझे डिनर पे नहीं बुलाया, तुमने मुझे खाने पे नहीं बुलाया, तुमने मुझे ये नहीं किया, है ना, ये मेरा हक बनता था तुमने अदा नहीं किया, मेरा उस मौके पे वो हक बनता था वो तुमने अदा नहीं किया। यही है ना सारा का सारा लड़ाई झगड़ा, राइट, यही है सारा का सारा फसाद कि तुमने मेरे साथ गलत किया, तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया जैसा करना चाहिए था, मैं हालांकि मैंने तो तुम्हारे साथ बड़ा अच्छा किया था, हालांकि मैं तो इतनी अच्छी हूं, मैं तो सबके हुकूक अदा करती हूँ, राइट, मैं तो सबके हुकूक अदा करती हूँ, जैसे आप में से अक्सर का मिजाज है मुझे पता चलता रहता है। ठीक है ना, चाहे अल्लाह ताला जिस वास्ते से भी पता चलवाए, हम आलिमुल गैब तो नहीं है, अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, ठीक है ना। तो जिसकी इसलाह अल्लाह को मकसूद होती है, तो अल्लाह ताला उसके बारे में फिर दकदूर को बताते रहते हैं कि ये ऐसी हैं, ये तमाशे करती हैं, ये ऐसी बातें करती हैं, ठीक है ना, ये अल्लाह का निजाम है, आप कुछ नहीं कर सकती इस बारे में, है ना। वो कुछ जो लोग होती है ना, फिर वो गिरेबान पकड़ना शुरू कर देती हैं दूसरों का, तुमने क्यों बताया, किसने बताया, किसने शिकायत लगाई मेरी? इसका जवाब भी सुन लीजिए, अल्लाह ने शिकायत लगाई, जाके पकड़े नाउज बिल्ला अल्लाह का गरेबान, जाके पकड़े अल्लाह का गरेबान। ठीक है, समझाने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं। तो अल्लाह का गरेबान पकड़ नहीं सकेंगी, अल्लाह जरूर पकड़ लेंगे, अल्लाह जरूर पकड़ लेंगे, ठीक है ना, अपने फरिश्तों के जरिए से पकड़वाते हैं। ठीक है, तो अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पैदा करने की जरूरत है। ठीक है, माफी मांगने अल्लाह ताला से, कह अल्लाह अब तक मैंने ये बड़ा बहुत गलत किया, ये शिकायतें लगाने वाले जो मैं पीछे पड़ी रही ना, तो अल्लाह आप मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, इस पर भी आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको किसी काबिल ना समझा कि आप जो है ना मेरी शिकायतें लगवा सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला के साथ खिलवाड़ खत्म करें, ये दीनदारी जो है ना किसी काम नहीं आएगी, ये बुरके और ये आलिमा कोर्स और ये दरस कुरान सुनना, ये किसी काम नहीं आएगा अगर अल्लाह को उसका मकाम नहीं दिया, राइट। अल्लाह को छोटे बच्चे से भी कमतर समझती रही, ठीक है ना, छोटे बच्चे से भी जो है वो शर्म आ जाती है, अल्लाह से शर्म नहीं आती, फिर किसी चीज का कोई फायदा नहीं होगा, किसी चीज का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये दीनी मिजाज पैदा करना है, यानी नदामत वाला मिजाज, नदामत वाला मिजाज, तौबा वाला मिजाज, ठीक है ना? ये मिजाज पैदा नहीं हुआ, आप 10 इबादतें कर लें, आप 100 इबादतें कर लें, आप हर हफ्ते जाकर के उमरा करके आ जाएं, आपकी जिंदगी जो है ना वो नहीं, फायदे में नहीं आएगी आपकी जिंदगी में फायदा इस दीन का। ठीक है, हम ये दुआ भी कर सकते हैं कि अल्लाह अपनी मोहब्बत और अपना डर हमारे दिल में डाल दीजिए। बेशक ये दुआ कर सकते नहीं है, करना है, और नबी अलैहिस्सलाम से सीख के करना है। अल्लाहुम्मा अज्अल, क्या है वो दुआ, अल्लाहुम्मा अज्अल वसाविस कल्बी खशियतक व जिक्रक वज्अल हिम्मती व हवाया फी मा तुहिब्बु व तर्द। अल्लाहुम्मा अज्अल वसाविस कल्बी खशियतक व जिक्रक, ए अल्लाह मेरे दिल में आने वाले जो ख्यालात हैं ना, मेरे दिल में आने वाली जो वसाविस, वसाविस का लफ्ज यहाँ पर ख्यालात के मानी में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, वो कौन से ख्यालात आ जाए मेरे दिल के अंदर, आना शुरू हो जाए, जो कि आपके डर वाले ख्यालात और आपके जिक्र वाले ख्यालात। नबी अलैहिस्सलाम ये दुआ सिखा करके गए हैं, ठीक है। अल्लाहुम्मा अज्अल वसाविस कल्बी खशियतक व जिक्रक व जिक्रक, ठीक है ना, आपके खशियत वाले और आपके जिक्र वाले ख्यालात मेरे दिल के वसाविस बन जाए, ठीक है, यानी खन्नास वाले जो वसाविस है ना वो खत्म हो जाए और उनकी जगह आपकी खशियत वाले वसाविस मेरे अंदर शुरू हो जाए। वज़अल हिम्मती, और मेरी हिम्मतों को, वह हवाया, और मेरी जो चाहते हैं, ख्वाहिशात हैं, फी मा तुहिब्बु व तर्दा, ऐसी बना दीजिए जिनके अंदर आपकी मोहब्बत हो और आपकी रजा हो, जिनको कि आप मोहब्बत, जिनको जिनसे कि आप मोहब्बत करते हो और जिनसे आप राजी हो, ठीक है, हिम्मत, मेरी हिम्मतों को, राइट, मुझे ऐसी हिम्मतें, यानी मैं गुनाह की हिम्मत ना कर सकूं, गुनाह के कामों में, राइट, मैं हिम्मत ना कर सकूं, मैं डर जाऊं गुनाह का काम करने से, और मेरी हिम्मतें जो है ना वो नेकी के कामों के अंदर लगनी शुरू हो जाए, आपकी रजा के कामों के अंदर लगनी शुरू हो जाए। जितनी आपने मुझे सलाहियत दी है, जितनी आपने मुझे फिजिकल पावर दी है, जितनी आपने मुझे इंटेलेक्चुअल पावर दी है, जहनी सलाहियतें दी हैं, वो सब के सब आपके रजा वाले कामों में लगना शुरू हो जाए। कैसी दुआ सिखाई नबी अलैहिस्सलाम ने, उनका हक हमारे ऊपर नहीं आता, नबी अलैहिस्सलाम का, और नबी अब के नबी अलैहिस्सलाम हमारे सामने बैठकर तो हमें ये दुआ नहीं बता रहे, तो जिस वास्ते से ये दुआ हम तक पहुंच रही है, उन वास्तों का हमारे ऊपर हक नहीं आता कोई। उलमा मशाइख इसी को तो कहते हैं, उन वास्तों को कहते हैं जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से सीखा और फिर हमें सिखाया, क्या। तो ये तो हो गई ना पिछली क्लास की बात है, अब तो हम आगे अब बढ़ना शुरू करते हैं। तो आगे फरमाते हैं, वलकद अरसलना इला उममिन, के तहकीक के हमने उम्मतों की तरफ, गुरोहों की तरफ, दुनिया के अंदर जो इंसानों के गुरोह थे उन्हीं को उम्मत कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पीछे भी तो उम्मत का लफ्ज आया था ना, वमा मिन दाबतिन फिल अर्द वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम, ठीक है, कोई भी दाबा नहीं बनाया, कोई भी परिंदा नहीं बनाया सिवाय इसके कि तुम्हारी तरह के वो गुरोह, ठीक है, और कयामत के दिन वो गुरोह दर गुरोह ही उठाए जाएंगे। तो हमने उम्मतों की तरफ तहकीक के रसूल भेजे, मिन कबलिक, आपसे पहले, मिन कबलिका, आपसे पहले भी, फअखज़नाहुम, फिर हमने उनको पकड़ लिया, बिल बासाई व ज़र्राई, बास में, सख्ती से, हजरत शेखुल हिंद अब्दुल्ला ने तर्जुमा किया, सख्तियों में हमने उनको पकड़ लिया, और तकलीफों के अंदर, जरर जरर पहुंचाने वाली चीजें, जो तकलीफ पहुंचाने वाली चीजें, उनके अंदर हमने पकड़ लिया, लअल्लहुम, ताकि वो, लअल्ला ताकि, काश के वो, ऐसे भी इसका तर्जुमा करते हैं कि वो, यतदर्रउन, तदर्रु तदर्रउन व खुफिया, ठीक है, गिड़गिड़ाना शुरू हो जाए, ताकि वो गिड़गिड़ाएं, यानी अपने गुनाहों पर माफी मांगना शुरू हो जाए, कि ये जो मुसीबत मेरे ऊपर आ रही है ये यकीनन मेरे अपने गुनाहों का का नतीजा है, यकीनन मेरे अपने गुनाहों का नतीजा है, जो ये मुसीबतें, जो ये बासा और ये जो गौर है ना, ये तकलीफें जो जिनमें मैं घिरी हुई हूं, ये किसी और का किया धरा नहीं है, ये मेरा अपना किया धरा है। राइट? क्यों गिड़गड़ाते हैं अल्लाह के सामने? क्यों गिड़गड़ाते हैं यहाँ पे? किस गिड़गड़ाने की बात हो रही है? अल्लाह के सामने गिड़गड़ाने की है? तो इसलिए कि उसने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है, उसने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है, उसने जो है वो मेरे साथ ये कर दिया है। नहीं, यहाँ पे तवर्रो का मतलब क्या है? अपनी गलती पर माफी मांगने के लिए गिड़गड़ाना, जैसे कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने, ठीक है, कि मछली के पेट में पहुंच गए ना। मछली का पेट तो हम तो समझते हैं जैसे कोई ड्राइंग रूम में पहुंच गए थे वो, है ना, अंडर अंडर वाटर ड्राइंग रूम में पहुंच गए थे। नहीं, कभी समंदर में डुबकी मार करके देखें समंदर का क्या 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 खौफ होता है, क्या दहशत होती है समंदर की, ठीक है ना। वो ओशन के अंदर चले गए थे, नीचे डूब गए थे, और वहां पर एक बहुत बड़ी मछली ने, जो कि शायद वेल होगी या वेल शार्क टाइप की कोई चीज होगी, इतनी बड़ी मछली कि उसने उनको चिबाए बगैर अंदर निगल लिया। और फिर उसके पेट के अंदर क्या था? सोफे लगे हुए थे, बेड लगा हुआ था, एसी चल रहा था उसके पेट के अंदर। नहीं, पेट के अंदर क्या होता है, आप लोगों ने तो बनाई होंगी ना कभी अपने किचन में, जो है वो मुर्गी बनाई होगी है, अगर कभी, वैसे तो आप सब कुछ साफ करके वो मुर्गी मिलती है बनी बनाई, उसको खाली जो है वो काटना ज्यादा सादा या उसको पकाना होता है, ठीक है। लेकिन हमने देखा है कि जब हमारे बड़े जो है ना, वो साबित मुर्गी जो है उसको ज़बह कर रहे होते थे, ज़बह करने के बाद उसके पेट के अंदर से आलाइशें निकाल रहे होते थे, गंदगी गलाजत निकाल रहे होते थे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो है वो उस गोश्त को धो रहे होते थे, फिर उसको पका रहे होते थे। तो मछली, जो लोग मछली साबित लेकर के आती हैं बाजार से, तो फिर उस मछली के पेट में भी जो है ना गलाजतें होती हैं, आलाइशें होती हैं, उनको निकालना होता है। तो पेट के अंदर एयर कंडीशन नहीं लगा हुआ होता मछली के, तो उस गलाजत के अंदर वो पहुंच गए थे। और खाली गलाजत भी नहीं थी, ठीक है, बल्कि अंधेरा, और कितनी घुटन होगी वहां पर, राइट जी, एसिड फॉर डाइजेशन होती है वहां पर सारी, ठीक है। तो कितना अंधेरा होगा, कितना घुटन होगी, और वो कितना उनके अपने जिस्म को, यानी जो एसिड्स होते हैं, बड़ा अच्छा गलाजत का लफ्ज हमने जो है वो नॉन साइंटिफिक लफ्ज इस्तेमाल कर लिया था, आपने साइंटिफिक लफ्ज जो है वो बता दिया, एसिड्स होते हैं, बाइल, ठीक है। तो उसका क्या काम होता है कि जो गजा होती है ना, उसको फिर वो डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं, घोलना शुरू करते हैं वो, तो उन वो तो गजा थे ना मछली की, ठीक है। तो इतनी मुसीबत के अंदर जा करके उनको क्या याद नहीं आया? याद नहीं आया अपने कौम की ज्यादतियां, कि मेरी कौम ने ज्यादती करी मेरे साथ, मैंने तो उसको खैर की तरफ बुलाया था, तो उसने जो है वो मेरी बात नहीं मानी, देखे मैं आज किस जगह पे पहुंच गया हूँ। भाई काश कि मेरी कौम मेरी बात मान लेती तो मैं आज इस मुसीबत में ना होता, ठीक है। नहीं, बल्कि क्या फरमाया, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जुल्म करने वाला हूँ, ए अल्लाह आपने तो मेरे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया, आपका तो कोई फैसला गलत नहीं होता। यानी कौम को तो भूल गए ना, कौम का तो कोई जिक्र ही नहीं है यहाँ पर, हत्ता के शैतान का भी कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर। जो हुआ मेरे साथ मेरे अपने गुनाह की वजह से, मेरे अल्लाह ने मेरे साथ किया। ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका, अंता मतलब अल्लाह, ठीक है, तो आपने मेरे साथ किया, लेकिन जुल्म नहीं किया मेरे ऊपर, बल्कि मेरे जुल्म की वजह से आपने मुझे यहाँ पे पहुंचाया, इस मुसीबत में पहुंचाया, ठीक है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम की मिसाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल, और बहुत सारे दूसरों की मिसाल है जो हमें दूसरे जराये से पता चलती हैं। तो यतवर्रउन का मतलब कि अल्लाह के सामने अपने गुनाहों के ऊपर गिड़गड़ाना। तो क्यों नहीं गिड़गड़ाए ये लोग? लअल्लहुम यतवर्रउन, कि वो गिड़गिड़ाते इस वजह से हमने उनको मुसीबतों में डाला था। फलौला इज जा अहुम बासुना, बस क्यों ना जब उनके ऊपर बास आ गई, ठीक है, बास यानी मुसीबत आ गई, और अजाब की शक्ल वाली मुसीबत आई, परमानेंट मुसीबत नहीं आई, अभी तो टेम्पररी अजाब आ रहा है, ठीक है, यानी नेमतें हमने उनसे वापस वापस ले ली, ठीक है, कुछ नेमतें वापस लेनी, जिंदगी की नेमत वापस नहीं ली, कुछ नेमतें वापस लेनी हमसे, उनसे। तो तो फिर वो फलौला तवर्रउ, क्यों नहीं वो गिड़गड़ाए। यानी पहले है कि हमने इसलिए भेजी थी ताकि वो गिड़गड़ाए, लेकिन फिर वो नहीं गिड़गड़ाए, तो अल्लाह ताला इसके ऊपर भी फरमा रहे हैं क्यों नहीं गिड़गड़ाए वो, क्यों नहीं उन्होंने माफी मांगी। वलाकिन कसत कुलूबुहुम, लेकिन फिर अल्लाह ताला इसकी वजह भी बयान कर रहे हैं कि इनके दिल तो सख्त हो गए। दिल सख्त कैसे होते हैं? फिजिकल हार्ट सख्त नहीं होता, वो वैसे ही रहता है, टिश्यूज और जिन चीजों का भी बना होता है वैसे ही रहता है। रूहानी दिल सख्त हो जाता है। रूहानी दिल सख्त कैसे हो जाता है कि उसके ऊपर गुनाहों की ऐसी लेयर चढ़ जाती है और वो लेयर इतनी हार्डन्ड हो जाती है, ठीक है, कि अब कोई चीज उस दिल के अंदर दाखिल नहीं हो सकती, अनवारात दाखिल नहीं हो सकते, जो नसीहत की शक्ल में आते हैं वो दाखिल नहीं हो सकते उस दिल के अंदर। ये दिल की सख्ती का मतलब होता है, ठीक है, यानी उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है हार्ड, जैसे कि वो होता है ना, अखरोट होता है, अखरोट के जो छिलका होता है वो कितना हार्ड होता है, तो अंदर से ऊपर से कोई चीज उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकती। कोकोनट, जिसको कि जौजुल हिंद भी बोलते हैं, जौज अखरोट को बोलते हैं, लेकिन जो कोकोनट होता है ना नारियल, उसको जौजुल हिंद बोलते हैं, यानी वो भी एक अखरोटी की तरह की चीज होती है, ठीक है, उसका भी शेल इतना हार्ड होता है कि उसके अंदर कोई चीज दाखिल नहीं हो सकती। दिल का ये मामला हो जाता है, अंदर तो वैसे ही रहता है जैसे कि है, लेकिन ऊपर से उसका छिलका जो है ना वो सख्त हो जाता है। तो वलाकिन कसत कुलूबुहुम, इनके दिल सख्त हो गए, वज़य्यन लहुम शैतान, और शैतान ने मुज़य्यन कर दिए उनके लिए, लहुम उनके लिए, मा कानू यअमलून, जो वो लोग अमल करते थे। कौन से अमल करते थे? जिसको शैतान ने मुज़य्यन कर दिया। भाई मुज़य्यन असल में वो नहीं थे, यानी असल में वो अच्छे अमाल नहीं थे, लेकिन शैतान ने ऐसा धोखा दिया कि वो उनको अच्छा समझना शुरू हो गया, राइट, उनको बड़े जो है ना वो खूबसूरत समझना शुरू हो गया, ठीक है, ऐसा मेकअप लगाया है ना जैसे कि कोई बहुत ही कोई खौफनाक किस्म की शक्ल हो, तो उसके ऊपर आप जबरदस्त किस्म का मेकअप थोपे, और बड़ी जो है ना वो कोई आर्टिस्ट किस्म की हो, कोई मेकअप वाली, वो ऐसे थोपे कि वो बहुत खूबसूरत नजर आना शुरू हो जाए, अंदर से तो खूबसूरत नहीं थी, ठीक है। तो शैतान जो है ना वो ऐसे करता है आमार के साथ, यानी जैसे मिसाल के तौर पर बिदतें, बिदतों को जो है, जो कि दीन नहीं है, बल्कि शैतान ने लोगों को जो है वो उन कामों पे लगाया है, लेकिन वो दीन नहीं थी, लेकिन वो नेकी समझ के बिदत कर रहे होते हैं, नेकी समझ के बिदतों, ठीक है। और आजकल जैसे इन्होंने लिखा बुरे अमाल को अच्छा बनाया, जैसे आजकल म्यूजिक को दीन में शामिल किया जा रहा है, ठीक है, पहले जो है वो जो मजारों पे जाने वाले अहले बिदत जो कहलाते थे, वो कव्वाली वाली म्यूजिक को जो है वो दीन समझते थे, आज जो है वो वेस्टर्न म्यूजिक को जो है वो दीन दीन समझा जा रहा है, वेस्टर्न म्यूजिक को, पॉप म्यूजिक को, ठीक है, और हर बयान के अंदर जो राइट जो मौलवी साहब का बयान है, मुफ्ती साहब का बयान है, शेखुल इस्लाम साहब का बयान है, उसके अंदर म्यूजिक डाल के आगे वायरल करते हैं, म्यूजिक डाल करके, आप बयान बगैर म्यूजिक के नहीं सुन सकते, आप चाहे कितनी अच्छा बयान हो रहा हो, बगैर म्यूजिक के आप बयान नहीं सुन सकते, ठीक है। तो दीन के साथ अच्छा, उसको बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि ना अब लोग म्यूजिक डाल करके ना लोग ज्यादा मुतवज्जे होंगे नेकी की बातों की तरफ, अगर म्यूजिक नहीं होगी तो लोग नेकी की बात सुनेंगे नहीं, तो म्यूजिक क्या हो गई फिर, नेकी नेकी का काम हो गया ना फिर, इसका मतलब तो ये किसने नेकी का काम बनाया? नबी अलैहि सलाम ने तो नहीं बनाया था इसको, किसने बनाया? शैतान ने बनाया, ठीक है ना। और ये जो इंसान होते हैं ये भी तो शैतान ही होते हैं, क्योंकि शैतान सिर्फ जिन की शक्ल में तो नहीं होता, इबलीस तो खाली एक शैतान तो नहीं है, इबलीस की पूरी एक फौज है जिन्हों की शक्ल में भी और इंसानों की शक्ल में भी, ठीक है ना। तो म्यूजिकल जो जो एप्स के ऊपर काम करके, जो तिलावत वाली, हत्ता कि तिलावत के साथ जो है म्यूजिक, हमने अल्लाह माफ करे, यानी ये दिन भी देखना पड़ गया है कि तिलावत भी चल रही है और साथ भी पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही है, ठीक है। तो ये किसने किया? ये जिन ने आकर के नहीं किया, ये इंसानी शैतान ने किया ये वाला काम। तो बिदआत होती हैं, और दूसरी क्या कि जो फराइज हैं उनका जो दीन के अंदर मुकाम है वो मुकाम नवाफिल को उठा करके दे दिया, ठीक है, मुस्तहबात को या मुस्तहबात को फराइज का मुकाम दे दिया। अब मुस्तहब अमल जो है उसको फर्ज समझ करके कर रहा है और फर्ज को जो है वो नफिल समझ करके छोड़ रहा है, राइट, फर्ज को जो है वो नफिल समझ करके छोड़ रहा है, लेकिन मुस्तहब अमल को या नफिल अमल को फर्ज समझ करके कर रहा है। ये भी ज़य्यन लहू शैतान में आता है, ज़य्यन लहू शैतान में आता है, ठीक है। नवाफिल में वो जीनत नहीं है जैसे कि फराइज के अंदर जीनत, ठीक है ना, जैसे कोई मामूली सी हुस्न वाली औरत हो, ठीक है ना, उसको मेकअप करके जो है वो ब्यूटी क्वीन बना दें आप, तो भाई वो असल में तो ब्यूटी क्वीन नहीं है, वो एक नॉर्मल सी, एक ठीक है, नॉर्मल सी अच्छी शक्ल की एक औरत है, उसके ऊपर ऐसा मेकअप लगाया, ऐसा प्लास्टिक सर्जरी करी कि वो ब्यूटी क्वीन बन गई, तो भाई वो है तो नहीं ब्यूटी क्वीन। तो नवाफिल का यही मुराद है, फराइज जो है ना ये ब्यूटी क्वीन है और नवाफिल जो है वो एक नॉर्मल सी, ठीक है, नवाफिल जब आप सही तरीके से मौके की मुनासबत से नवाफिल करते हैं अल्लाह ताला की मोहब्बत मिलती है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फर्ज, फर्ज छोड़ करके नहीं, ठीक है। तो इस जमाने के अंदर ज़य्यना लहुम शैतान के अंदर ये भी चीज शामिल है कि नवाफिल को फराइज के लेवल पे लेकर के आ गए, ठीक है। और फिर अजीब कि भाई ये इतदाल का रास्ता है और ये जो है वो, आप अब अगर सुन रहे हो तो माजरत के साथ भाई, लेकिन भाई हमारे सामने ये चीजें आती हैं तो फिर हम बाकी स्टूडेंट्स को भी बताते हैं, ठीक है, कि किसी से बात हो रही थी, ठीक है, तो उन्होंने कहा जी मैं तो जी इतदाल पे रहना पसंद करता हूँ और एक्सट्रीमिटीज जो है ना ये सही नहीं है, एक्सट्रीमिज्म सही नहीं है। तो हमने थोड़ा उनको फिर जरा आराम से बात करते रहे करते रहे करते रहे, उनका भी आपके पास ये एक्सट्रीमिज्म की डेफिनेशन कहाँ से, कहाँ कौन बताता है कि एक्सट्रीमिज्म क्या है और किसने आपको बताया कि इतदाल क्या है, दीन का इल्म तो आपने हासिल नहीं किया, अपनी अजम्पशंस की बुनियाद पर आपने डिफाइन किया हुआ है कि ये इतदाल होता है और ये जो है वो एक्सट्रीमिज्म होता है, ठीक है ना। तो अपनी अजम्पशंस की बुनियाद पर जो हम डिफाइन कर लेते हैं ना कि ये इतदाल का रास्ता है और ये जो है वो इफरात और तफरीत का रास्ता है, तो असल में हम अपनी अजम्पशंस की बुनियाद पर भी नहीं कर रहे होते हैं, शैतान करवा रहा होता है, शैतान करवा रहा होता है असल में, ये ज़य्यन लहुम शैतान, ठीक है ना भाई। कोई रास्ता इतदाल का रास्ता नहीं था, शैतान ने आपके सामने उसको इतदाल का रास्ता बना के पेश कर दिया, तो क्या ये ज़य्यन लहुम शैतान में नहीं आएगा, क्योंकि इतदाल का रास्ता तो बड़ा जबरदस्त रास्ता होता है, बेहतरीन रास्ता होता है, सिरात मुस्तकीम क्या है, इतदाल का रास्ता, ठीक है ना, सबसे खूबसूरत रास्ता सिरात मुस्तकीम, और सिरात मुस्तकीम क्या है, इतदाल का रास्ता, ठीक है ना। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने तो इतदाल की तारीफ ये बताई नहीं थी, ठीक है, तो फिर आपने किसी रास्ते को इतदाल का रास्ता जो डिफाइन कर लिया है तो ये कैसे कर लिया, ज़य्यना लहु शैतान, शैतान ने एक इफरात के रास्ते को या तफरीत के रास्ते को आपके सामने इतदाल का रास्ता बना के पेश कर दिया, शैतान ने पेश किया है, ठीक है ना, आपने खुद भी डिफाइन नहीं किया बल्कि शैतान ने आपको डिफाइन करके आपके सामने उसको रख दिया, ठीक है। तो और इन्होंने क्या लिखा कि हम बहुत बार हम तौबा कर रहे होते हैं लेकिन हमारे बड़े गुनाह में मुबतला, हमारे बड़े गुनाहों में मुबतला हो, अच्छा, तो जिसकी वजह से घर के सभी लोग पे मुसीबत आती है, क्या हर लोग के गुनाह की वजह से मिलती है, बड़ों के गुनाहों की वजह से क्या मुसीबत मिलती है, नहीं, किसी के गुनाह की वजह से किसी दूसरे के ऊपर मुसीबत नहीं आती, ठीक है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र अख़रा, ठीक है, कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, यहाँ पर बोझ से मुराद यहाँ पर गुनाह की सजा है, ठीक है, कोई किसी दूसरे की गुनाह की सजा जो है ना किसी दूसरे के ऊपर नहीं आएगी। तो ये जो आप कह रही हैं ना कि गुनाह तो बड़े कर रहे होते हैं लेकिन हम उसकी वजह से जो है मुसीबत में मुबतला हो रहे होते हैं, ये आपकी गलत अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, आपके ऊपर जो मुसीबत आ रही है ना वो बड़ों के गुनाहों की वजह से नहीं आ रही, आपके ऊपर जो मुसीबत आ रही है वो आपके अपने गुनाहों की वजह से आ रही है, पहली बात, पहली बात क्या क्या है कि आपके ऊपर जो मुसीबत आ रही है वो आपके अपने किसी गुनाह की वजह से आ रही है, बड़ों के गुनाहों की वजह से नहीं आ रही। ये आपकी गलत फहमी है, ये शैतान ने आपके लिए मुजयन कर दिया था इस बात को। गुनाह आप खुद कर रही थी, लेकिन शैतान ने आपके गुनाह को मुजयन कर दिया कि नहीं, तुम तो थोड़ी को गुनाह कर रही हो। और जो बड़े गुनाह कर रहे हैं ना, उसको कॉज बना दिया कि बड़ों के गुनाहों की वजह से तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ रही है, तुमको थोड़ी कोई गुनाह कर रही हो। ये शैतान ने किया आपके साथ, पहली बात। ये पहली बात खाली करिए। लेकिन इसमें एक दूसरी बात भी है। दूसरी बात क्या है कि वो ये है कि अगर अगर आप गुनाह नहीं कर रही हैं, कंफर्म अगर आपने करवा लिया है कि मेरा कोई अमल जो है वो गुनाह तो नहीं है, और इल्म वालों से पूछ लिया है कि मेरा कोई अमल जो है वो गुनाह के दायरा तारीफ में तो नहीं आता, ठीक है, और पता चल गया आपको कि नहीं आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, ठीक है, तो फिर आपके ऊपर जो मुसीबत आ रही है ना, ये मुसीबत नहीं है, ये मुसीबत है ही नहीं, ये मुसीबत है ही नहीं, ठीक है ना। तो आपने गलत समझा हुआ है कि ये मुसीबत है ही नहीं। तो शैतान ये भी करता है, ठीक है, कि कोई चीज जो कि मुसीबत नहीं होती है ना, उसको मुसीबत बना करके पेश करता है, ठीक है, उसको मुसीबत बना करके पेश कर देता है। मकसद क्या है उसका? मकसद यह है आपको फंसाना, वो किसी भी तरीके से फंसाए, उसका मकसद है फंसाना, ठीक है ना। तो ये भी होता है, ठीक है। तो इस वजह से इल्म हासिल करेंगी तब पता चलेगा कि आप कौन सा वाला गुनाह कर रही हैं, ठीक है ना। और इल्म हासिल करेंगी तब ये भी पता चलेगा कि भाई आपके ऊपर जो हालात आए हुए हैं ये मुसीबत नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ कबूलियत के बहाने हैं, अल्लाह ताला की तरफ बढ़ने के बहाने हैं, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पर अभी मुझे बात याद आ गई, ये अक्सर ये देखा गया कि जिन औरतों के घरों में अच्छे हालात नहीं होते हैं ना, वो तमीज से रहती हैं, ठीक है ना, वो बात मान भी लेती हैं और जो है वो अपने गुनाहों का इकरार भी कर लेती हैं, और जो है ना वो नेकी के रास्ते के ऊपर जो है वो कोशिश भी कर रही होती हैं। और जिनके घरों के अंदर जो है ना बड़े अच्छे हालात हैं, जी शौहर साहब जो है उनका बड़ा ख्याल रखते हैं, कोई मुसीबत नहीं है, कोई जो है वो ऐसे मामला नहीं चल रहे हैं ना, वो इतना मुश्किल होता है उनके लिए गुनाहों को छोड़ना, इतना मुश्किल होता है उनके लिए गुनाहों को छोड़ना कि वो छोड़ ही नहीं पाती गुनाहों, बस अपने लगी हुई है अपने वही, यानी टस से मस नहीं होती वो। इतना इल्म हासिल कर लेंगी, इतनी क्लासे ले लेंगी, इतना जो है बयान सुन लेंगी, इतना जो है वो कोर्स पढ़ लेंगी, गुनाह नहीं छोड़ेंगी। तो जब हम देखते हैं, मवाजना करते हैं ना इस दो किस्म की खवातीन में, तो एक किस्म नजर आती है जिनके घरों में मुसीबतें थी, शौहर जो है वो साथ नहीं था उनके, शौहर तकलीफें देता था, शौहर जो है वो मुश्किल क्रिएट करता था, तो हम देखते हैं कि उसमें एक आजजी है, उसमें वो अकड़ नहीं है, उसके अंदर वो बदतमीजियां नहीं है, या अगर हैं भी तो वो छोड़ने के लिए तैयार है। जबकि दूसरी तरफ जहां पे के बड़े अच्छे हालात हैं, वो अपनी बदतमीजियों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। झूठ दर झूठ दर झूठ, राइट। तो फिर अब जो शौहर का साथ ना देना, शौहर का जो है वो सपोर्टिव ना होना, अब ये मुसीबत बनी उसके लिए कि ये उसके लिए जो है वो तौबा का सबब बन गई ना, मुसीबत तो ना बनी है उसके लिए, ठीक है। तो यही तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पर कि हमने उनको बासा और दर्रा के अंदर जो पकड़ा था, क्यों पकड़ा था बासा और दर्रा के अंदर, लअल्लहुम यतदर्रउन, ठीक है, ताकि वो अपने गुनाह से माफी मांगे। तो ये अल्लाह ताला क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वाकई अल्लाह ताला जानते हैं कि मेरे बंदों में से अक्सर बंदे जो है ना मुसीबत में फंस करके वो मेरी तरफ पलटेंगे, माफी मांगेंगे, और अगर मैंने इनको मुसीबत नहीं दी बल्कि इनको अच्छे हालात में रखा, ये तो पलट के पूछेंगे भी नहीं, ये तो पलट के पूछेंगे भी नहीं, ये तो समझेंगे कि हमारे ऊपर जो अच्छे हालात है ना, ये तो हमारी नेकियों की वजह से आ रहे हैं। और यही होता है, आप देख लें अपने गिरेबान में झांक के देख लें या दूसरों के गिरेबानों में झांक के देख लें, अपने गिरेबान में झांक के देखना तो बड़ा मुश्किल काम होता है, चले दूसरों के गिरेबान में झांक के देख लें, ठीक है, दूसरों के गिरेबान में झांक के देखना तो बड़ा आसान काम होता है, सबसे आसान काम बल्कि यही होता है, ठीक है ना। तो देख लें, सब सब नजर आ जाएगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला भी यही फरमा रहे हैं यहाँ पर ना कि क्यों नहीं गड़गड़ाए ये लोग, क्यों? इसलिए कि इनके दिल सख्त हो गए थे। ठीक है, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ, बस जब उन्होंने भुला दिया, ठीक है, उस नसीहत को जो उनको की गई थी, ठीक है, वो नसीहत है जो उनको की गई थी दरस कुरान के अंदर की गई थी, या आलमा कोर्स के अंदर की गई थी, या जो है वो वैसे किसी मजलिस में की गई थी, फलानी आपा ने करी थी, फलानी बाजी ने करी थी, फलाने शेख साहब ने करी थी, वो नसीहतों जब उनको उन्होंने इग्नोर कर दिया, एक कान से सुना भी नहीं, बात तो सुनते भी नहीं है ना, पहले एक कान से सुनते थे, फिर दूसरे कान तक पहुंचती थी वो बात, फिर उसको उड़ाते थे, अब तो कान में घुसने ही नहीं देते, लगे हुए अपने फोन के ऊपर, है ना, लगे हुए अपने फोन पे, लगे हुए जो है वो बराबर वाली से बातें करने में, तो फिर कान में तो घुसा ही नहीं, तो दूसरे कान से निकलेगा कैसे, है ना, यानी दिमाग को कोई परेशानी ना हो जाए कहीं कि बात अंदर घुस गई तो अब दिमाग को प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर दूसरे कान से निकालना पड़ेगा, नहीं, मेरे दिमाग को तकलीफ ना पहुंचे। ठीक है, तो इस वजह से ऊपर से वो हमारे बचपन में ना, हमारे बड़े भाई जो है वो, हम लोग ये कुछ होते थे घरों के अंदर, होते हैं भाई बहनों के दरमियान ना कुछ कन्वेंशन होते हैं, तो हमारे भाई जो है ना वो बड़े मजे से ना, जैसे है ना आप अपने हाथ से जहाज बनाते हैं ना, बच्चों को देखा है कभी हाथ हाथ को ऐसे ऐसे चला रहे होते जैसे कि जहाज उड़ रहा है, तो वो ऐसे करते थे, कैसे हाथ जो है ना वो सर के ऊपर से गुजर गया, ठीक है ना, तो वो ये जहाज जो है जैसे सर के ऊपर से जहाज गुजर गया इस तरह से ना, तो वो इस तरह से दिखाते थे कि जैसे तुम्हें तो बात समझ में ही नहीं आई ना, तो तुम्हारे सर पे से गुजर गई, जैसे कि जहाज सर के ऊपर से गुजर जाता है। ठीक है, तो ऐसे नसीहत के साथ हमारा ये एटीट्यूड होता है कि सर पे से गुजर जाती है, अंदर दाखिल ही नहीं होने देते हैं उसको, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों के बारे में फरमाते हैं, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शय, फिर क्या किया हमने जब इन्होंने भुला दिया ना, इग्नोर मार दिया हमारी नसीहतों को, तो फिर हमने उनके ऊपर हर चीज के यानी हर नेमत के दरवाजे खोल दिए, बड़े घर के हालात अच्छे हो गए, शोहर भी जो है ना वो मानने वाला बन गया, राइट, और जो है वो सास अम्मा मुसीबत बनी हुई थी, सास साहिबा दुनिया से ही रुख्सत हो गई, ठीक है, और जो है वो दूसरे माल पैसे, शोहर की जॉब का मसला भी हल हो गया, है ना, फलाने मसले भी हल हो गए, ठीक है, तो फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शय हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू, हत्ता के जब ये लोग खुश हो गए उन चीजों के ऊपर जो कि उनको मिल गई थी, ठीक है, अखज़नाहुम बग़तन, फिर हमने उनको अचानक पकड़ लिया, फ़ाइज़ा हुम मुब्लिस, और फिर उसके बाद वो मायूस हो गए, ठीक है ना, अचानक पकड़ लिया, और फिर वो इज़ा हुम, ये इज़ा जो है ना जिसके बाद इसम आता है, जिस इज़ा के बाद इसम आता है, ये हुम क्या है, ये इसम है, इसम ज़मीर, ठीक है, तो इस इज़ा का मतलब भी अचानक होता है, इज़ा मुफाजातिया, अचानक, जैसे अचानक मौत आजकल है ना, वो हदीस में उसका जिक्र है कि एक जमाना आएगा कि जब मुफाजात या अमवात मुफाज, कुछ इस किस्म के अल्फाज है लेकिन मुफाजात का लफ्ज है उसके अंदर, ठीक है, अचानक मौतें होंगी, आजकल देख लें अचानक मौतें कितनी हो रही, तो इजा मुफाजातिया है ये कि फाइजा हम, फिर उसके बाद एकदम से वो लोग जो है ना वो मायूस हो गए, क्या मतलब कि अब जो है ना ये फाइनल अजाब आए, और अब जो है वो मौत आ गई, ठीक है ना, या इतनी बुरी मुसीबत आ गई कि अब जो है ना इनके सामने कोई उम्मीद की किरण ही बाकी नहीं रही, जैसे मौत आ जाए ना काफिर के ऊपर, जब मौत आ जाए तो काफिर के लिए कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती, फिर उसके बाद ईमान पे जिसको मौत आए तो उसके लिए तो उम्मीद है कि गुनाहों की सजा मिल मिल करके बिल आखिर जाना उसने जन्नत में पहुंचना है, काफिर के लिए तो कोई उम्मीद नहीं है ना, ठीक है, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला तो काफिरों का ये भी बताते हैं कि जैसे क्या है ये उसूल काफिरों फिल कुबूर, इस किस्म के एक आयत के अल्फाज हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, गलत पढ़ा होगा तो, ठीक है, कि जैसे कि कुबूर के अंदर, कब्रों के अंदर काफिर मायूस है ना, तो ऐसे ये लोग मायूस हो गए, ठीक है, क्योंकि उनकी फिर माफी का कोई कोई सामान नहीं है, काफिर की माफी का, तो जब ये अखज ना हूं बगतन वाला मामला आता है ना, तो फिर बस मायूसी मायूसी है उसके बाद। फकुत आदा बिरुल, बस फिर कट गई जालिम कौम वालों की जड़, जड़ कट गई उनकी। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और तमाम की तारीफ, तमाम की तमाम तारीफें आलमीन के रब के ऊपर, पालने वाले के लिए, ठीक है, सारी तारीफें तो उसी के लिए। तो ये है कुरान अजीम शान, ये है हमारे परवरदिगार के अल्फाज, ये हमारे परवरदिगार का कलाम है, ठीक है। और परवरदिगार कैसी बातें हमें बता रहे, तो इसके जरिए से जब हम इल्म हासिल करना शुरू करेंगे ना, कुरान को बेस बना करके जब हम इल्म हासिल करना शुरू करेंगे ना, तो फिर वो इल्म हमें परवरदिगार के करीब करेगा। लेकिन शर्त उसमें भी यही है कि नीयत हमारी करीब होने की ही होनी चाहिए, अल्लाह ताला के करीब होने की नीयत होनी चाहिए, किसी और के करीब होने की नीयत नहीं होनी चाहिए, वरना कुरान पढ़ करके भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। इन्नमल आमालु बिन्नियात। तो आज की क्लास तो इस तर्जुमे के अंदर ही मुकम्मल हो गई, इंशाल्लाह आगे जो है फिर अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। कोई सवाल या कोई और चीज़, कमेंट वगैरह कोई पूछ सकती हैं या बता सकती हैं, जुम्मे को भी इन आयात का तर्जुमा ही हमने बस पढ़ा था, लेकिन वो एक डिफरेंट ऑडियंस थी, उसमें मर्द भी होते हैं और ये एक ऑडियंस डिफरेंट थी, तो शायद वहाँ पे जो बहुत सारी बातें हुई थी वो आज नहीं हुई हैं। हालांकि तर्जुमा में इन्हीं आयात का पढ़ रहे थे, लेकिन आज एक काफ़ी डिफरेंट शक्ल की बात हुई, वहाँ काफ़ी डिफरेंट शक्ल से बात, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले जाए जिस शक्ल से जो बात की हो सबसे। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام.